ये आकाशवाणी है, अब आप अतहर सईद से ही समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन किया तथा उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया और जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया। भारत ने देश में कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम किए जाने की बात फिर दोहराई है। भारत का कहना है कि दोनों देशों में राजनयिकों की समान संख्या होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने कनाडा में भारत के राजनयिकों की समान संख्या की मांग की है। अफगानिस्तान के दूतावास को बंद किए जाने के सवाल पर श्री बागची ने कहा कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास चल रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। ये संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के गैर आपराधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन तंत्र के बारे में है। मंत्रालय ने कहा है कि इस अधिनियम को और अधिक व्यवसाय हितैषी बनाने तथा इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट दंड की फिर से जांच की गई और जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से इसे अपराध मुक्त कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आज एक बैठक में राज्य में आपदा स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव वीबी पाठक तथा अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। श्री पाठक ने राहत और पुनर्वास के लिए सेना तथा संबंधित एजेंसियों के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की संभावित जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सोम्बो बाबा मंदिर और नाथुला जैसे पर्यटक स्थलों के लिए परमिट कल से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। मौसम को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों को 15 अक्टूबर तक बंद रखने को कहा गया है। इस बीच सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। श्री फॉसे दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नाटककारों में से हैं और उन्होंने गद्य विधा में भी अच्छी खासी पहचान बनाई है। फॉसे की रचनाओं का मुख्य विषय मानवीय स्थितियां होती हैं। चीन में हांगचौ एशियाई खेलों के 12वें दिन भारत ने आज 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। फाइनल में ओजस देवतले अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश समाधान की टीम ने दक्षिण कोरिया को 230 के मुकाबले 235 अंक से हराया है। उधर महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा परनीत और अदिति के तिकड़ी ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। स्क्वैश में मिक्स डबल्स फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मलेशिया की आइफा आजमान और मोहम्मद की जोड़ी को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। पुरुष सिंगल्स में भारत के सौरभ घोषाल को रजत पदक मिला है। महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। बैडमिंटन में एचएस प्रणय ने पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। भारत अब कांस्य पदक के लिए जापान से खेलेगा। भारत 21 स्वर्ण 32 रजत 33 कांस्य पदक सहित कुल 86 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का शुरुआती मुकाबला न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत लिया है। आज अहमदाबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 283 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 36 ओवर और 2 गेंद में 1 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से कॉनवे ने नाबाद रहते हुए 152 रन और रचित रविन्द्रन ने नाबाद 123 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।